ईशानी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए ज़ैन से आधे घंटे का वक्त मिला था और वो टाइम बीत चुका था। ईशानी वहां से ना तो इंडिया में रुद्राक्ष को कॉल कर सकती थी और ना ही उस जगह पर इंटरनेट चल रहा था। आधे घंटे बीत जाने के बाद ज़ैन किसी की नहीं सुन रहा था। वो ईशानी को लेकर वापस आर्मी कैंप जाना चाहता था। ईशानी ने गहरी सांस ली और उससे कहा, देखो रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? हम सुबह चलते हैं ना? हम किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं जो आप टाइम देख रही हैं। हमने पहले ही आपको काफ़ी वक्त दे दिया है, हम आपको और मोहलत नहीं देना चाहते हैं। चुपचाप चलिए, आपकी हरकतें हमारे शक को और गहरा कर रही हैं, ज़ैन ने ईशानी को घूरते हुए कहा। वहां से जाने से पहले ईशानी ने एक बार साद और आदम की तरफ देखा। उन्होंने लाचारी से कंधे उचका दिए थे, वो इस मामले में अब उसकी और मदद नहीं कर सकते थे। ईशानी ने ज़ैन की तरफ देखकर कहा, ठीक है चलते हैं, मेरे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अपनी बात खत्म करके ईशानी चलने लगी। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है? पहले रुद्राक्ष ने ऐन मोमेंट पर मुझे किडनैप करके दी का केस अटका दिया था, अब जब चीज़ें सही होने को आई थी तो ये एक्सीडेंट हो गया और मैं किसी और जगह पहुंच गई। कहीं और भेज देते भगवान जी, पाकिस्तान ही भेजना जरूरी था क्या? ईशानी बड़बड़ाते हुए चल रही थी, तभी पीछे से आदम जोर से चिल्लाया, चल गया इंटरनेट सर, इंटरनेट आ रहा है, एक बार हम इसके कहाँ पर सर्च करके देखते हैं। आदम काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। ईशानी ने ज़ैन के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और दौड़कर आदम के पास गई। अचानक आदम के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। उसने ज़ैन की तरफ देखकर कहा, सर देखिए इंडिया से क्या न्यूज़ आ रही है। क्या हुआ, अचानक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहीं फिर से आप लोगों ने इंडिया पर कोई हमला तो नहीं कर दिया? ईशानी ने झट से कहा, जिस पर वो तीनों उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। ज़ैन ने आदम के हाथ से मोबाइल लिया। न्यूज़ को देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। ईशानी कुछ समझ नहीं पा रही थी तो आदम बोला, हमें ये खबर देखकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, आखिरकार उसे इंसाफ मिल ही गया। मैंने तो पहले ही कहा था वो ऐसा नहीं कर सकती है। देखो कन्फ्यूज मत करो, क्या हो रहा है क्लियरली बताओ, ईशानी ने चिढ़कर कहा। साद उसे बताते हुए बोला, तुम तो इंडिया से हो ना, तुमने उस अदाकारा ईशानी शर्मा का नाम सुना होगा, बहुत साल पहले उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। तुम जानती हो इसके पीछे उस एक्ट्रेस आलिया खुराना का हाथ था और उसे सजा मिल गई है, सर की वो फेवरेट एक्ट्रेस थी, उसकी मौत पर इन्होंने काफ़ी दिनों तक मातम मनाया था। जैसे ही आदम ने ईशानी को इंसाफ मिलने की बात बताई तो ईशानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से ज़ैन के हाथ से मोबाइल छीना और सारी न्यूज़ पढ़ने लगी। न्यूज़ में साफ बता रहे थे कि रुद्राक्ष खुराना ने ईशानी की डायरी को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया था, जिसके बाद आलिया खुराना को गुनहगार माना गया था। न्यूज़ देखने के बाद ईशानी की आंखों में आंसू थे। ईशानी को इस तरह रोता हुआ देखकर साद ने कहा, अब आप क्यों रो रही हैं, क्या आपकी भी फेवरेट एक्ट्रेस थी वो? ईशानी ने अपने आंसू साफ किए। आदम दौड़ कर गया और उसके लिए पानी लेकर आया। ईशानी ने पानी पीकर खुद को शांत किया और फिर साथ की बात के जवाब में कहा, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस नहीं, मेरी बड़ी बहन थी, मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ। क्या तुम ईशानी शर्मा की बहन हो? वो तीनों एक साथ बोले। ईशानी ने हाँ में सिर हिला गया। ज़ैन को अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तरीका है खुद को बचाने का, सच्चाई तो तुम साबित कर नहीं पाई और अब जब तुम्हें पता चल गया कि वो एक्ट्रेस मेरी फेवरेट थी तो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हो। मेरा नाम ईशानी शर्मा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इस केस को मैं, मोक्ष सिंघानिया और विकास खन्ना हैंडल कर रहे थे। तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो, मेरा नाम और फोटो तुम्हें इन न्यूज़ आर्टिकल्स में मिल जाएगी, ईशानी ने शांत लहजे में कहा। ज़ैन उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही साद और आदम ने ईशानी के बारे में सब सर्च कर लिया था। साद ने मोबाइल की स्क्रीन ज़ैन के सामने कर दी थी। ईशानी की फ़ोटो के साथ बाकी न्यूज़ आर्टिकल्स छपे हुए थे, साथ ही उसकी मौत की न्यूज़ भी। ज़ैन ने गहरी सांस ली और कहा, उन्होंने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। ईशानी ने भी वो न्यूज़ देखी जहाँ सब जगह उसके मरने की खबर थी। वो देखकर ईशानी ने ज़ैन से कहा, अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं मरी नहीं हूँ और मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। ये इतना भी आसान नहीं है, ज़ैन ने बुझी हुई आवाज़ में कहा। उसने ईशानी को बैठने का इशारा किया। ईशानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो सिर हिलाकर बोली, क्यों आसान नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे जनरल मेरी मदद करेंगे, तुम जानते हो मेरी सच्चाई, मैं कौन हूँ, तो मेरी हेल्प करोगे ना तुम? हम आर्मी कैंप चलते हैं, मेरी रियल आइडेंटिटी बताते हैं और फिर वो मुझे वापस इंडिया भेज देंगे। ईशानी ज़ैन के जवाब का इंतजार कर रही थी। उसके कहते ही ज़ैन, आदम और साद तीनों चुप हो गए। उनकी चुप्पी ईशानी को और परेशान कर रही थी। वो बोली, प्लीज़ इस तरह शांत मत रहो, तुमने कहा था कि मेरी सच्चाई साबित होने के बाद तुम मेरी मदद करोगे। पहले तो तुम मुझे आर्मी कैंप ले जाने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे, फिर अब क्या हो गया? क्योंकि मुझे लगा था कि आप एक जासूस हैं, जैन ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, हम उनके सामने आपकी सच्चाई साबित नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी दी फिर भी वो इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देंगे। इंडियन गवर्नमेंट को आपके नाम से ब्लैकमेल किया जाएगा, आपको जेल में कैद कर लिया जाएगा और ना जाने इस प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाएगा। इसका मतलब मैं सही थी और तुम जानबूझकर मुझे उस नर्क में धकेलने जा रहे थे। तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, ईशानी गुस्से में बोली और फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। जैन, आदम और साद उसकी तरफ देख रहे थे। साद ने धीरे से कहा, अब हम क्या करेंगे सर, ये तो मासूम साबित हो गई है। इसे यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते घरों की तलाशी लेने के लिए स्पेशल टीम जाती है। हाँ, और दो दिनों बाद वो सभी घरों की गश्त लगाने वाले हैं। ऐसे में हम दो दिन से ज्यादा इन्हें छुपाकर नहीं रख पाएंगे, आदम ने परेशान स्वर में कहा। जैन ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी बात भी सही है, पर हम अब इसे आर्मी कैंप भी नहीं लेकर जा सकते हैं। वहां इसके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाएगा। हमें कुछ भी करके इसे यहां से कुछ दिनों तक महफूज रखना होगा और फिर हम इन्हें इंडिया लेकर जाएंगे। आदम और साद ने जैन की बात पर सहमति जताई। ईशानी वहां बेड पर सिमटी हुई बैठी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि जैन ने मदद का बोलकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। आपस में सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद जैन ईशानी के पास गया और कहा, देखिए हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको पूरी सेफ्टी के साथ आपके घर पहुंचाएंगे। आपको भी हमारा साथ देने का वादा करना होगा। यहाँ छुपकर रहना आसान नहीं है। हम छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे और आपको हमारे घर ले जाएंगे। हमारे पास सिर्फ दो दिन का टाइम है और इन दो दिनों में आपको खुद को सबसे बचा कर रखना होगा। ईशानी ने गुस्से से जैन की तरफ देख कर कहा, मैं खुद को बचा कर ही रख रही हूँ, तुम्हें ही मुझे अपने सो कॉल्ड आर्मी ऑफिसर से बचाना होगा। पता नहीं कैसे लोग हो तुम सब, पहले प्रॉमिस करते हो और फिर बाद में तोड़ देते हो। देखिए हम बहुत अच्छे लोग हैं, तभी आपको आर्मी के पास लेकर नहीं जा रहे हैं। इस तरह आप हमारी शख्सियत पर सवाल नहीं उठा सकती हैं, जैन ने चिढ़कर कहा।
ईशानी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुंह बनाकर वहीं पर लेट गई थी। उसने अपना मुंह तकिया में छुपा लिया था। जैन आदम और साद के साथ कमरे से बाहर आ गया था। आदम ने कहा, सबसे पहले तो हमें हमारी ड्यूटी इस तरह से बांटनी होगी ताकि पूरे दिन में हम तीनों में से कोई एक शख्स ईशानी के साथ रह सके। कौन ईशानी, जैन और साद एक साथ हैरानी से बोले। अरे वही मोहतरमा जो अंदर मुंह फुलाकर बैठी हुई है, उसने ही तो बताया कि उसका नाम ईशानी है, आदम ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। उसने बताया और इतनी जल्दी तुमने याद भी कर लिया? हम पहले ही कह रहे हैं हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं चाहिए, तुम दोनों उसकी पूरी इज्जत करोगे, जैन ने उन्हें डांटते हुए कहा। आदम और साद ने उसकी बात पर हामी भरी। सब कुछ डिसाइड हो गया था, वो लोग ईशानी को सुरक्षित इंडिया पहुंचाने के बारे में प्लानिंग करने लगे। वहीं कमरे के अंदर ईशानी के चेहरे पर सुकून के भाव थे। भले ही वो एक अनजान जगह पर आकर फंस गई थी जहां उसकी जान को खतरा था, पर फिर भी उसके दिल में सुकून था। ये आपने किया रुद्राक्ष, मैंने कहा था ना एक दिन आप मेरा साथ जरूर देंगे। जिस दिन सच आपके सामने आ जाएगा तब आप अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ हो जाओगे। अब समझ आ रहा है कि आप मुझसे बात करने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे। किस्मत कितनी बुरी है ना जो इतना करीब लाकर हम दोनों को दूर कर दिया। मुझे आपसे बात करनी है, आपको थैंक यू कहना है जो आपने मेरी दीदी को इंसाफ दिलाया। आई लव यू रुद्राक्ष, रिश्ते की शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो पर वादा है इस रिश्ते का एक खूबसूरत अंत होगा जो हम दोनों के बूढ़े होने पर हमारे बच्चों के साथ होगा, ईशानी ने मन ही मन कहा। रुद्राक्ष के साथ अपना फ्यूचर सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो अगले ही पल उसकी आंखें नम होने लगी थीं। वो रुद्राक्ष से कोसों दूर थी। क्या बाकी लोगों की तरह आपको ये लगता है रुद्राक्ष कि मैं मर गई हूँ? प्लीज आप खुद को संभाल कर रखना, मैं जल्द ही आपके पास वापस आ जाऊंगी, ईशानी ने खुद को उम्मीद देते हुए कहा। कुछ ही देर में सोचते हुए उसे नींद आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष इस वक्त अस्पताल की छत पर खड़ा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान तारों से झिलमिला रहा था। रुद्राक्ष ने उन्हें देखते हुए बोला, अगर भगवान भी आकर मुझे ये कह दे कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो तो भी मैं यकीन नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो लेकिन ये बात सच है कि तुमने हमेशा मुझे दिल से प्यार किया था। हाँ तुम जिद करती थी कि तुम्हें ईशानी को इंसाफ दिलाना है लेकिन तुम सही थी। देखो मैंने तुम्हारा अधूरा काम कर दिया है तो अब वापस लौट आओ। ज्यादा इंतजार नहीं करने वाला हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हें खुद ही आना होगा। रुद्राक्ष और ईशानी एक दूसरे के लिए दिल में उम्मीद लिए बैठे थे। भले ही उन्हें पास आने में वक्त लग जाए लेकिन वो एक दूसरे के करीब फिर से जरूर आएंगे। क्या इतने खतरे के बीच जैन ईशानी को सुरक्षित इंडिया पहुंचा पाएगा और रुद्राक्ष खुराना फैमिली से बदला लेने के लिए अब क्या करेगा ये आगे पता चलेगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं, प्लीज़ पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।